जानते हैं भारत में बनारस के गांव में आजकल एक युवा मुस्लिम व्यक्ति गाय की कथा सुनाते हैं और उनकी इस कथा को सुनने के लिए पता नहीं कितने ही लोग वहां इकट्ठे होते हैं। और यही नहीं, वो बाकायदा कथा से पहले गाय का पूजन करते हैं।
मैं मोहम्मद फैज खान,
गंगा मैया की
शपथ लेता हूँ
जीवन भर
गौ सेवा करता रहूंगा।
जी हाँ, यही है वो मोहम्मद फैज खान, जो अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय बने हुए हैं। आखिर ये फैज खान कौन है, ये कथा वाचन कैसे शुरू हुआ, तो बात की भारत में जाने माने पत्रकार अजय सिंह के साथ, तो उन्होंने बताया।
अनिता जी, आपको बताएं कि ये जो मुस्लिम कथाकार हैं मोहम्मद फैज खान
जी,
ये एक्चुअली बनारस के तो नहीं है, लेकिन बनारस के इर्द गिर्द के इलाकों में आकर के वो इस तरीके से गाय से कितने फायदे हो सकते हैं, गाय के क्या क्या गुण होते हैं और किस तरीके से मुस्लिम धर्मों में भी ये गाय के बारे में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, उनके बारे में वो बताते हैं कि उनके अपने कुरान में किस तरीके से लिखा गया है कि गाय दूध कितना पीने से क्या क्या होता है, कितने फायदे हैं और किस तरह से मानना चाहिए, इस पर वो पूरी कथा करते हैं। खास बात यह है कि इस समय रमजान का महीना चल रहा है
जी।
वो रोजे से भी रहते हैं, पक्के मुसलमान हैं, वो पांच वक्त के नमाजी भी हैं, वो शाम के वक्त रोजा खोलते हैं, फिर गंगा के किनारे जाकर गंगा के पानी से वजू करते हैं। छोटी सी अगर एक और जानकारी दे दें आपको, तो यहाँ पर नजीर बनारसी ने बनारस में कभी गंगा के लिए कहा था कि ये आबे जमजम का पानी है, और उन्होंने एक लाइन का शेर भी लिखा था कि हमने तो नमाजें भी पढ़ी हैं गंगा तेरे पानी से वजू करके। तो नजीर की तरह ही कुछ मोहम्मद फैज खान भी जो है वो सबसे पहले वो गंगा जल से शपथ लेते हैं। जो लोग कथा सुनने आते हैं उनको वो शपथ दिलाते हैं कि गौ रक्षा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे।
अच्छा।
शपथ दिलाने के बाद वो मंच पे आते हैं। उनकी जो वेशभूषा होती है वो हम आपको बता दें अनिता जी, की वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, माथे पर रोली और टीका लगाते हैं, सामने पूरा नारियल और चुनरी रखा रहता है, तो वैसे देख करके आपको वो एक उस तरीके से नजर आएंगे कि एक ऐसा शख्स है जो कोई हिंदू है, बाबा टाइप का लग रहा है।
अच्छा।
लेकिन जब वो मुस्लिम टोपी लगा लेते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं। पर वो बहुत सटीक बात भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने वेशभूषा में बताते हैं कि गेरुआ वस्त्र और माथे पे टीका, रामनामी दुपट्टा ओढ़ने पर दुपट्टा हमें हिंदू बना देता है, ये खुद फैज कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम टोपी पहन लेते हैं तो मुस्लिम नजर आने लगते हैं।
अच्छा।
यानी पहनावे से हमारा नजरिया बदल जाता है।
इसलिए
कहते हैं कि खुदा ने हमें बिना कपड़े के भेजा है, हम सब एक है। जब हम पृथ्वी पे आए थे तो हमारे पास कोई कपड़ा नहीं था, वो तो हमने अपने हिसाब से जो है वो मजहब को बांटा, अपने वस्त्रों से, अपने कपड़ों से, अपने तरीकों से बांटा, अल्लाह खुदा या भगवान ने नहीं बांटा। तो इस तरीके से वो करते हैं। और अनिता जी, आपको बताएं कि फैज खान क्या समझते हैं गाय के बारे में और इस्लाम में गाय के लिए क्या कहा गया, वो इतनी बाखूबी समझाते हैं अच्छे तरीके से कि कथा में बैठे हुए लोगों को समझ में आता है। और आप भी अगर उनकी जुबानी सुनेंगे और लोग भी अगर उनकी जुबानी सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आप उनकी जुबानी सुनिए
जी।
कुरान शरीफ का जो सबसे बड़ा सूरा है, सूरह बकर, जिसका अर्थ होता है गाय का अध्याय। कुरान शरीफ के सूरह 22 सूरह हज में आयत 37 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नहीं पहुंचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है तुम्हारी त्याग की भावना। पता चला गौ रक्षा का संदेश न केवल सनातन धर्म में है बल्कि इस्लाम धर्म में है। वेदों का संदेश स्पष्ट है, गाय विश्व की माता है। इस्लाम धर्म में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि गाय का दूध और घी शिफा है और गाय का मांस बीमारी है।
जी।
तो वो पूरी तरीके से एक जागरण कर रहे हैं निकल करके और हर जगह जा के कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने पिछले साल 80 घाट के, बनारस के 80 घाट पर उन्होंने किया था इस तरीके का। इस बार वो बनारस से ही कुछ दूरी पर, 30 किलोमीटर दूरी पर कैथी एक गांव है, वहां पर वो कर रहे हैं जहां मार्कंडे महादेव का मंदिर है। और आपको एक बात और बताऊं कि वो बाकायदा शिव की पूजा भी करते हैं, जाते हैं तो शिव की पूजा भी करते हैं,
अच्छा।
पूजा करने के बाद से फिर वो हाँ वो पूरा शिव की पूजा करते हैं, गंगा जल से वजू करते हैं, उसके बाद से वो रोजा रखते हैं, रोजा को तोड़ते हैं, तो इस तरीके से वो कार्य करते हैं। और एक ये बताते हैं कि जो समाज को बांटने का काम करते हैं, अक्सर मुस्लिम को ये कहा जाता है कि ये गऊ मतलब जो तमाम मुद्दे बनते हैं सांप्रदायिकता को लेकर के, तनाव को लेकर के, दो तो उसमें गाय भी एक मुद्दा होती है
जी।
तो उनका कहना है कि गाय जो है वो मजहब देख करके तो दूध नहीं देती है, वो तो सबके लिए देखती है, वो थोड़ी देखती है कि हम ये हिंदू के लिए दूध देंगे, हम सिर्फ मुसलमान के लिए दूध देंगे।
आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये खान साहब हैं कहाँ के, और ये जो कथा वाचन की जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई?
अच्छा, मोहम्मद फैज खान जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के रहने वाले हैं।
अच्छा।
इन्होंने अच्छी पढ़ाई की, पीएचडी किया। हाँ। पीएचडी करने के बाद छत्तीसगढ़ का ही एक जिला है सूरजपुर, जहाँ हाँ। के एक डिग्री कॉलेज में ये लेक्चरर हो गए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, वहाँ ये टीचर थे। और वहीं पर एक लेखक है गिरीश पंकज, उनकी एक उपन्यास इन्होंने पढ़ी, एक गाय की आत्मकथा।
अच्छा।
और उस आत्मकथा को पढ़ने के बाद अब से तकरीबन 4 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ी और वो किताब इतनी अच्छी लगी कि ये गऊ कथा करने निकल पड़े।
अच्छा, तो अपनी नौकरी छोड़कर गऊ कथा करने के लिए निकल पड़े, तो उनको कुछ विरोध का भी क्या सामना करना पड़ा? यहाँ सब इतनी आसानी से हो गया क्या?
नहीं, इतनी आसानी से नहीं हुआ। जी, आपको बताऊं कि जब वो मतलब जब वो कथा करने निकले तो उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा, बहुत बार लोगों के जवाब सवालों का जवाब देना पड़ा, लेकिन ये डिगे नहीं और अपने तर्कों से लोगों को समझाते रहे। आज ये है कि आज ज्यादातर लोग फैज की बात मानने लगे हैं, समझने लगे हैं, और इन्होंने मुसलमानों को भी खुद समझाया बैठा बैठा करके। तो इन्होंने विरोध तो झेलना पड़ा, लेकिन फिलहाल ये अकेले अभी भी चल रहे हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं गाय की रक्षा के लिए।
ये तो बहुत अच्छा एक प्रयास है कि किसी धर्म को लेकर जब वो राजनीति वाली बातें आने लगती हैं, और एक तरफ ये फैज साहब हैं जो इसका मानवता का पहलू लेकर बात कर रहे हैं और लोगों का ध्यान दिला रहे हैं।
बिल्कुल
जी,
बिल्कुल। इन्होंने तो और आपको बताया अनिता जी कि ये जो है ना, जब इनके पास आप बैठेंगे तो इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 27-28-29 साल के एक युवा हैं, लड़के हैं, और इनको इतना अच्छा ज्ञान है, संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान है। एक संस्कृत जब वो बोलते हैं तो आपको लगेगा कि कोई प्रकांड ब्राह्मण विद्वान संस्कृत बोल रहा हो, कोई मुस्लिम तो बोल ही नहीं सकता संस्कृत। और जब उर्दू बोलते हैं तो उर्दू जबान में आपको लगेगा कि कोई बहुत, क्योंकि उर्दू बहुत शीरी जबान होती है, और जब उर्दू में आप जब बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये कोई मुस्लिम है। तो भाषा पर भी बहुत पकड़ है, कमांड है इनकी अपनी भाषा पर, और उतना ही ज्यादा उन्हें ज्ञान है, अध्ययन है हिंदू धर्म पर भी और मुस्लिम धर्म पर भी। इसलिए आप कह सकते हैं कि बनारस में जो एक कबीरपंथी हुआ, जो एक कबीर का धर्म था, जिसने कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को दोनों के एका करने के लिए तमाम बातें लिखी, तमाम चीजें कहीं कबीर ने, तो एक तरीके से ये आधुनिक युग के गाय को लेकर के आप कह सकते हैं कि एक कबीर हैं जो इस तरीके से निकल पड़े हैं। और मोहम्मद फैज खान लोगों के अंदर गाय के लिए अलग जगा रहे हैं।